الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفات بیان کی ہیں. تو آج ہم کچھ اور راز دیکھیں گے خوش رہنے کے اور خوشی کے. چھپے ہوئے تو ہمارے اپنے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کی وجہ سے اتنی خوبصورت زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ یہ سیریز سنیے کہ ہو سکتا ہے آج تک 20, 30, 40, 50, 60 سال کی زندگی آپ کی جو گزری، اس میں وہ بات سمجھ ہی نہ آ سکی جو آپ کو آج سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ جو پھر آنے والی زندگی ہے آپ اس کو خوبصورتی کے ساتھ گزار سکیں. آج ہم جو راز لیں گے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے راز ہیں. بس بات یہ ہے کہ اس قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر پڑھیں تو یہ ساری باتیں ہم پہ کھل جاتی ہیں. تو پہلی چیز جو آج کی اس نشست کی ہے وہ کیا ہے؟ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں مدد، کفایت، رشد و ہدایت، لطف و کشادگی اور مدد اور تائید ملے گی. کتنا بڑا راز ہے یہ، اور اگر اس راز سے پردہ اٹھا لیا جائے تو دنیا سے شرک ختم ہو جائے. آج دنیا میں شرک کی ایک بہت بڑی وجہ غیر اللہ سے مانگنا ہے. کبھی ان کے ساتھ اپنے نفع کو جوڑ لیتے ہیں اور کبھی نقصان کو جوڑ لیتے ہیں. یا تو کسی کی امید ہمیں اس کے در پہ جھکاتی ہے، یا کسی کا خوف کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ دے دے، اور اگر ان دیویوں کو اور ان ہستیوں کو میں نے ناراض کیا تو کہیں یہ مجھ پر اپنا وبال نہ ڈال دیں. اس نے شرک کا دروازہ کھول دیا. یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا راز کسی کو پتہ چلے. آپ بھوکے رہ لیتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کھانا چھوڑا ہوا آج کل، لیکن کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں روٹی لے سکوں. اسی طرح کی اور بہت چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے کہ جیسے قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور خود ہی عقل والے ان کو ان کی بے نیازی سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظریں صرف اللہ پہ ہیں. کوئی دے نہ دے یہ تو بات کی بات ہے، کہنے سے ہی انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. کوئی دے دے تو بھی دل میں بوجھ رہے گا، ہائے کس سے مانگا، کیوں مانگا. ایون بیٹے سے ماں مانگ لے، اور اسی طرح سے بہن بھائی سے مانگ لے. باقی تو کچھ ضرورتیں تو اللہ نے لگائی ہیں، شوہر سے بیوی مانگے گی اور اسی طرح، لیکن یہ مانگنا نہ مانگنا تو بات کی بات ہے، کوئی مل جائے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا، یا تو مل جائے گا، اور اگر نہیں ملے گا نا تو کبھی کسی کو آپ کا پردہ نہیں کھولے گا. وہ اس کو پتا ہے آپ اس کے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ دوسروں سے مانگنا کمزوری ہے، اللہ سے مانگنا طاقت ہے. جب آپ اپنے رب پہ نظریں لگاتے ہیں نا وہ مجھے دے گا نا. کسی سے بھی کچھ مانگیں گے تو لوگ سمجھیں گے نا آپ کمزور ہیں. دیکھیں نا ضرورت مند کیا کمزور، بیچارہ، ہائے بیچاری، مسکین. کوئی ترس کھا کے دے گا، کوئی آپ کو کسی اینگل سے دے گا، کوئی کسی اور جذبے سے دے گا. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی جذبے سے مبرر ہے کہ وہ آپ پہ ترس کھا کے دے دے، اس کو آپ پہ رحم آ جائے، وہ آپ کو مسکین سمجھے. وہ دے گا نا تو عبادت ہے اس سے مانگنا. یعنی بندوں سے مانگنا عبادت نہیں ہے بلکہ ذلت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے. اس سے خوبصورت عبادت کسی نے کیا کبھی کی ہوگی؟ دینا نہ دینا، ملنا نہ ملنا تو بات کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کی قبول ہو گئی. اور بڑے بڑے اصحاب اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ مجھے دعاؤں کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، بس یہ فکر ہے کہ توفیق مل جائے. تو آج سے اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیے. نہیں بتاؤں گی، شوہر کو بھی نہیں بتاؤں گی، خود ہی اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا. بچوں کو بھی نہیں بتاؤں گی، دوستوں کو تو بتانا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مدد، کفایت، رشد و ہدایت، لطف و کشادگی اور مدد اور تائید، اتنے تحفے کیسے ملتے ہیں کسی اور سے مانگ کے. پھر اسی طرح ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اس کے دین پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اتباع کی، اس کی بات سنی، اس کی دعوت قبول کی، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی ضرورت نہیں. غموں کو مٹانے کا یہ نسخہ بھی نوٹ کیجئے گا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. جتنا زیادہ اللہ پر توکل کریں گے، اس کے دین پر ایمان لائیں گے، مراد یہ ہے کہ پورا یقین رکھیے کہ اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ بڑا پیارا دین ہے. اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، अलैहिस्सलाह अल्लाहु भी काफ़िन अबदा, कि अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे को, तो आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। फिर रसूल की तबा कीजिए पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ये ना सोचिए कि मैं रसूल की तबा करूँगी तो मैं जाहिल कहलाऊँगी और अप टू डेट नहीं रहूँगी। ये हाल हुलिया ना इख्तियार किया तो ये, ना किया तो वो किया, लोगों को क्या अच्छा लगता और इसको क्या उसको, नहीं, सीधी सी बात, फोर्थ स्टेप, टिप टिप टिप, और फिर उसकी बात सुनी हस्बे तौफीक। कौन कहता है हर बात मानी जाती है, लेकिन कोशिश तो पूरी हर बात मानने की जा सकती है ना। आपको कोई लाइन खींच कर नहीं देता कि आप इसके ऊपर एक पाँव रखे पे दूसरा बाहर ना आए। हाँ, आपको एक लाइन डायरेक्शन के लिए दी जाती है कि बस इससे दूर ना रहना। तो अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह के नबी का ज़िंदगी में इत्तबा कीजिए, बाकी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कमी पूरी करेगा। और फिर दावत को कबूल कीजिए। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। जब वो तुमको पुकारे फ़ौरन लब्बैक को। हम तो पहले अपने स्केड्यूल्स देखने लग जाते हैं ना, हम तो अपने इफ्स एंड बट्स में पड़ जाते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स तोलते हैं। लेट्स सी, देखती हूँ किस बात पे अल्लाह को यस कहूँ, किस पे नो कहूँ। मुकाबले पे कोई हिजब इख्तलाफ ना हो तो बहुत इजी होता है, लेकिन जहाँ इख्तलाफ में खड़ा चाहे एक बच्चा ही क्यों ना हो, कुछ माल हो, कुछ दुनियादारियाँ हों, तो वहाँ हम सोची पड़ जाते हैं, और वो चीज़ फिर हमें बोझ लगने लगती है जो कल तक खुशी से करते थे। तो ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में परेशानियों को लाने का ज़रिया बनती है। तो गमों को दूर करने का फिर क्या दूसरा नुस्खा देखा, तवक्कुल बिल्ला, इत्तबाए रसूल और इस्तजाबे दावत। बस फिर अल्लाह मेरे साथ है, और जिसके साथ अल्लाह होगा क्या उसको तनहा छोड़ेगा। फिर नेक्स्ट लीजिए कि अल्लाह इनकी मदद ज़रूर करेगा जो इसकी मदद करते हैं, लिहाजा इसका मर्तबा बुलंद करेगा, इसकी शान बढ़ाएगा, इसका निगरान होगा, इसके दुश्मन को छोड़ देगा, इसके हरीफ को शिकस्त देगा, इसके खिलाफ साजिश को नाकाम बना देगा। सुभान अल्लाह, क्या तोहफे मिलते हैं थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में उसकी मदद करने को। आयत तो सही ऐसे ही है कि अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा, इन अल्लाह ला यंसुरु, किसकी जो मैं यंसुरु हूँ, जो उसकी मदद करे। लेकिन आप देखिए कि ज़्यादा ज़्यादा हम इसको अनसारुल्ला ही कह सकते हैं ना, कि जो अनसारुल्ला बन जाएगा, हालांकि अनसारुल्ला से भी मुराद अनसारु फ़ी दीन अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो मुख्ताज ही नहीं है, वो तो खिलाता है, उसको तो खिलाना नहीं पड़ता, उसकी मदद की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑनर है, इजाफत है, अल्लाह ने अपनी तरफ जिससे दी कि तुम मेरे दीन की खिदमत करो, मैं तुम्हारी करूँगा। आप देखिए, सबसे कम द लीस्ट मिनिमम, जिसको यहाँ सबसे पहले अगर आपने नोट किया है, अंसारुल्ला बनने से क्या मिलता है। नंबर एक, अल्लाह उस बंदे का अपना मर्तबा बुलंद करता है। जाइए दुनिया में, आप हज़ारों के कपड़े पहन लीजिए और लोगों से कहें कि आप कब मर्तबा बुलंद कर दें, आपको किसी स्टेज पे बढ़ा दें, कोई शर्त नहीं है। आप लाखों की दावतें खिला दें और लोगों से कहें ज़रा मेरा मर्तबा बुलंद कर दो, नहीं होगा। इवन जो वोट्स लेकर ऊपर आ भी जाते हैं, तो लोग ऊपर से तो जो मर्ज़ी कहें, अंदर से दिल में न जाने उनके लिए क्या सोचे। तो आपको अगर चाहिए कि बुलंद मर्तबे मिले, कौन है मेरे समेत जो नहीं चाहता कि अल्लाह हमें रफ़ा दर्जात दे, तो इसकी शर्त है बी अंसारुल्लाह। सूरह सफ़ पढ़ लीजिए, हज़रत ईसा ने क्या कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन है मेरा मददगार। अल्लाह ने उन 12 हवारियों से आज इतनी बड़ी नस्ल खड़ी कर दी ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में चूर, अल्लाह नहीं रखता। दूसरा फ़ायदा, उसकी शान बढ़ाएगा। देखिए, शान, शानदार, शायाने शान, लफ्ज़ ही बड़े प्यारे लगते हैं, हर एक शान बढ़ाने के तो गम में पड़ा हुआ है। ये जो आप माशरे में पाँव से पाँव जोड़ना चाहते हैं, आप दुनिया के एक रैट रेस में लगे हुए हैं, ये हर शादी दूसरे से बढ़कर, हर दावत एक से बढ़कर, हर घर दूसरे से सर उठाता हुआ, क्या ये शान बढ़ाने के गम नहीं है। किसी गांव का कमी कमीन भी है तो वो भी शान बढ़ाने में है, और कोई जागीरदार है तो कोई मज़ारे है तो कोई शेख है तो कोई बिजनेसमैन है, सबको शान की फिक्र है। ये VIP लॉन्जेस की तस्वीरें खींच खींच के जो आप भेजते हैं लोगों को कि यहाँ बैठी हूँ मैं, ये है मेरा इस वक्त मुकाम, शान बढ़ाना होता है। किसकी मिलेगी, किसकी शान बड़े होगी, जो अंसारुल्ला बनेगा। चलिए, दो चीज़ें तो बड़ी टिप टॉप वाली हैं, तीसरी भी ले लीजिए, अल्लाह उसका निगरान होगा। कहाँ निगरान होगा, ऑल द टाइम। रकीब है अल्लाह ताला। रकीब कहते हैं उसको जिसकी नज़र आपकी गर्दन पे हो। और रकीब क्या है? आपकी इतनी गहरी नज़र से हिफाजत कर रहा है कि उसने तो आपके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। मा यल्फिज़ु मिन हौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। आप अंसार अल्लाह बनिए, आपकी निगरानी अल्लाह के ज़िम्मे। चौथी चीज़ देखिए, उसके दुश्मन को छोड़ देगा। जिसके दुश्मन को अल्लाह छोड़ दे, उसका कोई बाल कभी का कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जिसके साथ अल्लाह लग गया, उसका दुश्मन तो ज़रूर ही मغلوب हो जाएगा। उसके दुश्मन के हाथ में कोई ताकत नहीं होगी किसी किस्म की। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह किसी के दुश्मन को उसके हाल पे छोड़ दे, तो उस दुश्मन का मغلوب होना लाजमी है, और ये शख्स तो गालिब आएगा। ये भी बड़े काम की चीज़ हो गई। और अब ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को सरहदों पर खड़े हुए फौजी ही हों। हमारे तो घरों में बड़े दुश्मन होते हैं, हमारे तो रिश्तेदारों में कोई शरीकेदार हैं, तो कोई पार्टनर्स हैं, और कोई ऐसे रिश्ते हैं कि जिधर जाकर खामखा खुद ब खुद ही वो चीज़ें जहन में आने लग जाती हैं जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो क्या पता चला, आप अल्लाह के दीन के खिदमतगार बनिए, सच्चे दिल के साथ उसके रस्तों पे निकलिए, तो अल्लाह ताला आपके दुश्मनों को मदद देना छोड़ देगा, और इसके हरीफ को शिकस्त देगा, और इसके खिलाफ साजिशों को नाकाम बना देगा। आपको क्या और चाहिए बताइए? इसके बाद भी कोई श्योरिटी, कोई इंश्योरेंस चाहिए आपको? तो नहीं चाहिए। तो जब अल्लाह ताला बंदे के साथ है, तो फिर बंदे को किसी और की कोई फिक्र नहीं। अपने दिल पे हाथ रखिए, ठंडा दूध पीकर सो जाइए। जो कहावत, जो मिसाल समझ आती है। हमने बहुत सारी नफ्सियाती उलझनों में खुद को रखा हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे। इसलिए अपने आप को हमेशा अल्लाह ताला की निगाहों में रखिए, और अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। एक और रास लीजिए, और वो है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। नहीं कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई ताईद, मदद, कुशादगी, हिमायत, जो मर्जी कह लीजिए, अल्लाह के सिवा। यानी मदद और ताकत सब अल्लाह के हाथ में है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा नुमाइंदा, कोई लीडर, कोई बादशाह, कोई वजीर आपका बाल भी का नहीं कर सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता, सिवाय अल्लाह के। हमारे यहाँ ये एक नागवार कलेमा है। अमूमन बड़ी ख़राब चीज़ देख कर कहते हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हालांकि आप देखिए तो सही, ला हौला वला कुव्वत, ऐसे लगता है ज़मीन और आसमान इसके हिसार में आ जाते हैं। किसी की कुव्वत है? जैसे कोई बादशाह के या फिरौन का जो जुमला कुरान में भी आता है, अना रब्बुकुम अलाला, वो तो एक बड़क मारता होगा ना। अल्लाह कहते हैं आओ सामने, और क़यामत के दिन इसका इजहार होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है आज के दिन? कोई जवाब ही नहीं है, ही कोई नहीं तो जवाब कौन दे? तो खुद ही कहा जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल गहार, उसे एक अल्लाह के लिए जो वाहिद भी है और गहार भी है, अकेला भी है। तो आज के बाद अल्लाह को महसूस कीजिए अपने करीब। फिर अगला रास लीजिए, अलम नज अल्लहु आईनैन, क्या हमने इसे दो आंखें नहीं दी? सूरत बलद की आयतें हैं, 30वां पारा। यानी दो आंखों की नेमत को ज़रा से गौर से तो देखिए, जिनसे किताबे कायनात को पढ़िए, दफ्तरे जमाल को देखिए, हसीनो दिल फरेब मनाजिर का मुशाहिदा करें, और अपनी निगाहों को ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ करें। अल्लाह ने ये आंखें काजल डालने के लिए नहीं दी, इनको और लंबे लंबे आईलाइनर लगाने के लिए नहीं दी, और गैरों से नज़रें मिलाने के लिए नहीं दी। अल्लाह ने इसलिए दी हैं कि इसके ज़रिए कायनात की इस किताब को भी पढ़िए, और रब्बे कायनात के ऊपर भी नज़रें लगाइए। जिस रब ने ये आंखें दी, उसी से कायनात का जमाल ना देखें। क्या देखा आपने? मैंने घूमने गए आप कहीं? छुट्टियों में सैर की आपने कोई? अगर नहीं की तो ना शुक्री की आपने इन आंखों की। कुरान ना पढ़ना अगर आंखों की ना कदरी है ना, तो कायनात के इस हुसन को ना देखना भी ना कदरी है। लोग इसको वक्त का ज़िया कहते हैं, हालांकि इससे तो वो कुर्ब मिलता है कि जिसके बाद यकीन आ जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल मुसव्विर भी वही है, अल खालिक भी वही है। तो आप अपनी निगाहों को ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ कीजिए, इन आंखों का सही इस्तेमाल कीजिए। हक के रास्ते देखिए, हक के रास्ते पहचानिए, और इन आँखों से उस रब को देखने की ख्वाहिश भी कीजिए कि वजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। इन आँखों का हक तो उससे अदा होगा जब हमारी ये आँखें आँखें देने वाले को देखेंगी। कब कभी तड़प आई दिल में कि मेरे मालिक, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। आप सोचिए तो सही, अगर ये आँखें ना होती तो इतने प्यारे रिश्ते देखते? कायनात का हुसन तो एक साथ, रिश्तों का हुसन, लोगों के चेहरों पे हमारे लिए मोहब्बत, वो खुशी देखते? बच्चा देख ना सके, उसको क्या लगे लोग उसके कितने लाड कर रहे हैं? और इन्हीं आँखों से तो हम फिर एक एक चीज़ देखते हैं, तो इसका हक अदा कीजिए, ये भी खुशी का एक रास है। हर वक्त ही कुड़ते रहना, हर वक्त ही जलते रहना, और आँखों को अच्छी चीज़ों से मींच कर सिर्फ ख़राब चीज़ों पर रखना, तनकीदें करते फिरना, कभी लोगों की खूबियाँ भी तो गिन कर देखिए। और फिर इससे आगे, अलम नजअल्लहु ऐनैन लिसानं व शफतैन, अगली ही आयत, अगला राज है, एक जुबान और दो होंठ दिए। इंसान फसाहत से बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है, साहिराना लहजे में गुफ्तगू करता है, और अपने दिल और माफ़ी ज़मीर की अदायगी करता है। कभी आप सोचिए कि जो दिल में है हम वो बोल ही ना सके। होते हैं दुनिया में ऐसे लोग, दे आर नॉट एबल टू टेल देयर पॉइंट ऑफ व्यू, होते हैं वो गूंगे गूंगे गुनगुनाते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती। और ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह से मांगी कि मैं अपनी बात सीधी सीधी बता दूँ, रब बिशराह ली सदरी। वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अपनी ज़बान और अपने इन होंठों का शुक्राना अदा कीजिए। बात करें तो अच्छी करें, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, बात करें तो कौलन बलीगा, फसाहत से बात करें, और बात ऐसी नपी तुलियों के दूसरे उसके सहर में खो जाएं। इससे मुराद लोच नहीं है, लचक नहीं है, हक बात में एक खूबसूरती होती है। वो कहते हैं ना कि दिल से जो निकलती है दिल में उतरती है। जब हमारी बातें दिल से नहीं निकलती, ऊपरी ऊपरी बातें होती हैं, तो अगलों के दिल तक जाती ही नहीं है। तो आज से आपने अपनी ज़ुबान और अपने बोलने की कदर करनी है। फिर एक और राज क्या है, वला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 7 है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, तुम्हारा इल्म बढ़ेगा, फहम बढ़ेगा, तुम्हारी रोज़ी में बरकत होगी। क्या पता चला, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर व फिक्र करते रहेंगे ना तो सब बढ़ जाएगा और तुम्हारी मदद होगी और खैर बढ़ेगा। ये है जी शुक्र का एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अल्लाह का शुक्रिया बोलिए, इंसानों का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मल्लम यशकुरिन्ना सलम यशकुरिल्ला। और शुक्रगुजार बंदा चिड़चिड़ा नहीं होता, जलाकुटा नहीं होता, नेगेटिव माइंड नहीं होता, वो हमेशा लोगों के साथ हंसने बोलने वाला होता है, पॉजिटिव माइंड होता है। और जितना आप शुक्र करेंगे ना इल्म बढ़ेगा, क्योंकि आप बड़े रिलैक्स मूड में हैं तो आपके अंदर सीखने की सलाहियत बढ़ेगी, फहम बढ़ेगा, उलझे हुए दिमाग से आप सीधी सी बात सुने। मैं नहीं कहती कि आप विरासत के मसले सीखें, आप सीधी सूरह फातिहा बकरा की तफसीर सुने, दिमाग उलझ जाता है, फहम ही नहीं है, दिमाग पे इतने बोझ हैं। सारे बोझ पीछे रख कर अल्लाह की बात सुनिए, फिर देखिए आपको शुक्र का मतलब कैसे समझ आता है। रोज़ी में बरकत है तो हाथ में थोड़े से पैसे, बरकत बहुत है। देखिए कभी कभी बहुत पैसा होता है, बरकत नहीं होती। किसी से बात हो रही थी तो मैं सुनती जा रही थी, वो बोल रही थी पाउंड के रेट पे बात करने लग गई, कहती पाउंड बहुत ऊपर चला गया, पहले इतने मिलते थे अब इतने मिलते। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, ऐसे ही होगा जो आप कह रहे हैं। फिर खुद ही कहने लगी, लेकिन ऐसे बरकत कोई नहीं है, पहले पाकिस्तान थोड़े से भेजते थे उससे कितना कुछ आ जाता था, अब इतने पैसे बन जाते हैं लेकिन बरकत कोई नहीं। तो बात तो सच है, बरकत के लिए आपको हकीकत में अल्लाह ताला पर नज़रें लगानी होंगी, तो वो फिर आपके रिस्क में भी बरकत देता है। फिर एक और लीजिए, उसने अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतों से तुम्हें नवाजा है, आमो खास दीनों दुनिया अहलो अयाल माल सलाहियतें आज़ा जवारेह और रूह सब नेमते दी हैं। अब इसमें से आप अलग कर लें, ज़ाहरी कितनी है तो बातनी कितनी है। ज़ाहरी वो है जो हमें दुनिया में दिख रही हैं, बातनी वो है जो अंदर दीन की सूरत में है। ज़ाहरी अगर अहलो याल माल तो बातनी सलाहियतें हैं, आज़ा देखिए कुछ बाहर हैं कुछ अंदर है, और जिसम बाहर है तो रूह अंदर है। आज रूह खिंचे तो किधर जाएगी? अभी भी मैं इस क्लास से पहले इंजॉय कर रही थी आज के सबक को जो हमने कब्र के बयान में पढ़ा, यकीन करें, ऐसे लगता है कि एक टूर लेकर आते हैं हम रोज़। इस सोच के साथ ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी उस कब्र को याद किया करें। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को देखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर इन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। अभी मैं बैठी हुई सोच रही थी, क्योंकि आज हमने देखा कि एक मोमिन के क्या इकराम हैं, क्या उसकी इज्जतें हैं, कब्र में उसको क्या क्या नेमतें मिलेंगी ना, तो दिल कर रहा था जाए एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे दुनिया की किसी खूबसूरत जगह पे जाते हुए पहले से होता है ना। मतलब किसी को अगर मेरे मुँह से नियाग्रा फॉल का नाम सुना उसने, तो जाने का शौक होगा। आपको कोई कहता है कायरांगढ़ जाइए, बहुत प्यारी जगह है नॉर्वे में, तो एक तड़प सी शुरू हो जाती है ना खूबसूरती के साथ। इसी तरह अब कब्र में भी जाने को दिल करता है। ठीक है, आप देखिए पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं, खौफ होता है, हाय बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, लंबा रास्ता है, बैठना पड़ेगा, हिली रास्ता है, गाड़ी उलट ना जाए, लेकिन एडवेंचर तो होता है ना। बिल्कुल, कब्र की बातें करते हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जहन साफ़ होते जा रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी है। हम जिन चीज़ों का जिक्र नहीं करते ना, तذکرہ नहीं करते, वो असल में हमारे दिलों पर बोझ डालती हैं। तो जिक्र किया करें इन चीज़ों के बारे में। अपने आप को देखे देखे, ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी है आपके लिए, मेरे लिए, आपको, मुझे, इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेना है और समझना है। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाएगा। चलिए एक और जुमला मर्दे मोमिन का, सूरत मोमिन में है, उफविज़ु अम्री इलल्लाह। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, मैं अपनी शिकायत इससे करता हूँ, अपना हाल इससे कहता हूँ, इससे हुस्ने ज़न रखता हूँ, इस पर तवक्कुल है, इसके हुक्म पर राज़ी हूँ, इसको अपने लिए काफ़ी समझता हूँ। इमेजिन तो कीजिए, एक ऐसा शख्स जो वक्त के हुक्मरान और वो भी फिरौन के सामने खड़ा है और कह रहा है कि मेरा मामला तो अल्लाह पे, यानी तूने जो करना है कर ले फिर। ये ईमान बोलता है, खोखला ईमान, खोखली बातें। और हुस्ने ज़न देखिए, शिकवा अल्लाह से, शिकायत उससे, और गुमान के कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, ये ईमान रखना है। ये है एक राज खुश रहने का, कि अपने सारे मामले अल्लाह के हवाले कीजिए। आप क्यों अपना बच्चा ले लेके फिर रही हैं, माँ के हाथ में दीजिए, देखिए वो कैसा अच्छा रखती है, जाइए आप शादी में इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। एक बच्चा माँ के हाथ में देकर एक यंग बच्ची को सुकून मिल जाए, तो बच्चे को माँ के हाथ में देने के बाद अगर वो अल्लाह के हाथों में अपने मामले को देना समझ ले, तो फिर उसके सुकून और खुशी का क्या हाल होगा। ये मैंने आपने अपने मामले खुद पकड़े, मैं इसीलिए नहीं सही हो रहे। जैसे माँ कहती है ना बच्चे को, मैं तुझे खिलाऊंगी, वो कहता नहीं मैं खुद खाऊंगा। चम्मच में 6 दाने थे, उसमें से एक मुंह में गया, 5 नीचे गए, खिला रहा है, गिरा रहा है खाना हाथ से। माँ कहती इधर आ मैं खिलाऊं, पकड़ के समेट के 10 दाने इकट्ठे मुंह में डाल दिए। हमारा मामला भी कुछ इसी तरह का है। बच्चे को बड़ा बनने का बड़ा शौक होता है, वो कहता है मैं अपना काम खुद करूंगा, हालांकि आप कहते हैं छोड़ें, आधा गिराता है आधा फैलाता है, वो कहते हैं मैं खुद नहाऊंगा, मैं खुद कपड़े पहनूंगा। अल्लाह के सपुर्द कीजिए खुद को, पूरे का पूरा, सर से पांव तक, नाखून से बाल तक, फिर पूछिए कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। और फिर एक और जुमला लीजिए, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, जब वो मुख्ताज होते हैं तो रोज़ी देता है, कहत में इनकी मदद करता है, इस्तग़फार करते हैं तो मग़फ़रत करता है, बीमार होते हैं तो शिफा देता है, और मुब्तलाए मुसीबत होते हैं तो आफ़ियत देता है। और कौन देगा हमें ये सब कुछ। सूरत शुरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से भी अल्लाह सुबहाना तआला की ऐसी ही हमदो सना होती है कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वो मेरे सारे मामलात को बहुत अच्छा देखता है। तो याद रखिए, उससे मांगिए, अल्लाह की नेमतों को अपने सामने महसूस कीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, और आपने नज़रें बस उस पर लगानी है, वो अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। अगर आपको इसका यकीन आ जाए तो आपको भी अपनी बख्शिश की उम्मीद लग जाए। हूँ मैं गुनाहगार, लेकिन वो है बड़ा प्यार करने वाला। और फिर एक और जुमला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसका दरवाज़ा बंद नहीं, इस पर पर्दा नहीं पड़ा, इसके खजाने ख़त्म नहीं हुए, इसका फजल ख़त्म नहीं हुआ, इसकी रस्सी कटी नहीं। आप देखते हैं कि दुनिया में बड़े से बड़े बादशाह के भी दरवाज़ा हो ना, तो रात को बंद हो जाता। बड़ी बड़ी असेंबलियाँ, बड़े बड़े वजीर मशीर, वीकेंड्स पे ऑफ, बड़े से बड़ा बैंक जिसमें आपका लाखों डॉलर भी हो सकता है बिलफर्ज, वो भी किसी वक्त बंद ही मिलता है। एटीएम मशीन नॉट वर्किंग, कभी पर्दा डाल देते हैं लोग कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, ऑफिस टाइम क्लोज, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी आपसे पीछे नहीं होती, उसकी रस्सी नहीं कटती, उसका फजल खत नहीं होता। और फिर क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? वो इसके गम और अलम में काफ़ी है, इसको हमलावर से बचाता है, मक्कार के मकर से महफूज रखता है, जो इसके खिलाफ साजिश करता है इससे हिफाजत करता है। तो फिर उसी के सामने अपने गम और अपने हम डालिए, अल्लाह के यहाँ रोजी तलाश करो। जी ये जुमला लिखिए, खजाने उसी के पास हैं, खैर उसी के हाथ में है, वही सखी दाता अलफत्ता हर अलीम है। गैरों के सामने जाकर मांगने से क्यों अपने आप को बेइज्जत करते और करवाते हैं? अल्लाह ताला के पास रोजी के खजाने तलाश कीजिए, उसी के पास, यकीन करें किसी बंदे के हाथ से भी आपको मिलता है ना तो पीछे से अल्लाह ही उसको कहता है। वो किसी ने एक जुमला कहा, वो खुद नहीं आता, किसी को भेज देता है, किसी के दिल में डाल देता है, जाओ इसकी ये ज़रूरत पूरी करो। और बस जिसको ये राज मिल गया वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है। जो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है अल्लाह इसके दिल को हिदायत देता है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, सूरह तगाबुन की आयत है ये। जितना ईमान ज़्यादा उतनी हिदायत ज़्यादा, जितना ईमान ज़्यादा उतना मान ज़्यादा। फिर अल्लाह उसकी तकलीफ़ दूर करता है, उसके गुनाह माफ़ करता है, उसके गुस्से को ख़त्म करता है, उसके रास्ते को रोशन करता है और उसकी रहनुमाई करता है। आप भी अपने ईमान पे काम कीजिए, और ईमान लाने के लिए उसी की तरफ पलटना पड़ता है जिसको जानना है, उसकी किताब, उसकी बात, उसके नामों पे गौर व फिक्र आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाएगी। अल्लाह ने जो नेमत तुम पर की है इसे याद करो, तुम मुर्दा थे जिंदा कर दिया, बेराह थे हिदायत दी, फ़कीर थे गनी कर दिया, जाहिल थे इल्म दिया, कमज़ोर थे तुम्हारी मदद की। क्या वाम बिनेमति रब्बिक फहद्दिस, सच है ना? ये नेमते हैं, कुछ ना थे कुछ कर दिया, रूहों की सूरत में थे अल्लाह ने जिंदा कर दिया, हिदायत से दूर थे अल्लाह ने हिदायत के दरवाजे हम पर ऐसे वाह कर दिए कि हर एक दरवाजे के बाद एक और दरवाज़ा खुलता जाता है और इंसान हिदायत के शहर में मौजें करता है। वो कहते हैं मेरी वो भी कुछ ज़िंदगी थी जो मैंने हिदायत से पहले गुजारी। अल्लाह अकबर, जितना ज़्यादा आप अल्लाह पर नज़रें लगाएंगे ना अल्लाह ताला उतना आपकी उम्मीदों को भर लाएगा। और फिर कितनी बार तुमने मांगा इसने दिया, सोचिए तो सही, आज तक ज़िंदगी में क्या कुछ मांगा मिला? इतनी दफ़ा तो कभी कोई नहीं देता, एक से दूसरी बार किसी से कुछ मांगना पड़े ना तो शर्मिंदगी आती है। आप कहते हैं पहले भी कह दिया था, फिर को कल भी कहा था, आज फिर मांगू। इंसान इस तरीके से दुखी होता है कि फिर मांगना ही अच्छा नहीं लगता। सोचिए ज़रा, चंद जुमले अपने शऊर पे डालिए, मैंने कितनी बार अल्लाह से आज तक मांगा और उसने मुझे दे दिया, कभी ताना मिला? कितनी बार तुम लड़खड़ाए, कितनी बार तुम लड़खड़ाए उसने सहारा दिया, कितनी बार उसर में पड़े उसने यसर दिया यानी आसानियाँ दी, कितनी बार तुमने इसे पुकारा उसने सुना। सोचने की बात है, तो फिर एक बार और मांग लीजिए, हर दफ़ा यही सोच के फिर मांग लिया करें। फिर एक और राज है, वो है दुरूद शरीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से रंजो फिक्र दूर होते हैं, ज़ख्मी दिल शिफा पाते हैं, उलूम के दरवाज़े खुलते हैं और मुकद्दर खुलते हैं। साहबी ने कहा था, अल्लाह के नबी मैं कितना वक्त दुरूद पढ़ूँ? होते होते आखिर में वो कहने लगे, मेरा तो ख्याल है मैं अपनी दुआ का सारा वक्त दुरूद पर डाल दूँ तो मुझे तो बिन मांगे मिल जाएगा। तो शऊर के साथ सुबह शाम कम अज़ कम 10-10 बार तो कहा करे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन। पूरा पढ़ लीजिए तो फ़बीहा, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज का वही असल दुरूद है, आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ और सहाबा की ज़ुबानों से गुज़रता हुआ हम तक पहुँचा हुआ, मुहद्दिसीन और आइमाए कराम और औलिया कराम के थ्रू हम तक पहुँचा हुआ, वही दुरूद पढ़िए। बाकी तो लोगों ने अपनी मोहब्बत में कुछ ना कुछ जोड़ दिया तो आपके गम दूर होंगे। कोई भी गम ज़िंदगी में आए ना, किसी का दिल बोझल होता है, सबका होता है, ये मत कहिए कि आपका होता है और किसी का नहीं होता। बस किसी को महसूस होता है, किसी को महसूस नहीं होता। आराम से शऊर से बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, पूरा पढ़ने को दिल करे तो पूरा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं। फोकस करने के लिए उंगलियों पर पढ़ना चाहिए पढ़ लीजिए, लेकिन गिन के संभाल के रखने की बजाय, ऐसी चीज़ों की बजाय बस आप क्या करें इस शऊर से कि अल्लाह मेरा ये गम दूर कर दे। यकीन करें आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपका दिल हल्का हो गया। अब ये ना कीजिएगा कि दुरूद पढ़ते हुए अल्लाह के नबी से मदद मांगने लग जाए। देखिए शैतान चोर दरवाज़ों से आ जाता है, हमें नहीं पता होता। हम लोग मोहब्बत में कुछ कर रहे होते हैं लेकिन शैतान की तो नज़र हमारी नेकियों पे है ना, किसी तरह भी ले ले तो वो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मांगने की तरफ ले जाएगा, फिर शिर्क के दरवाज़े खुलेंगे। तो ऐसा नहीं करना। चलिए अदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाइए, अपनी ज़रूरतें उसे पेश कीजिए, इससे मुराद मांगिए, इससे रोज़ी चाहिए और अपनी हालत इसके सामने रखिए। देखिएगा आपका गम कैसे दूर होता है। दिल में खुशी है, देखिए सिर्फ अल्लाह से मांगने की खुशी बहुत है, अपनाइत है ना। आपको तो नहीं, मैं आपके सिवा किसी से नहीं मांगूंगी। और जिससे आप लें या दें ना उससे ताल्लुक़ बनता है। मर्द अगर बीवी को देता है ना तो इससे ताल्लुक़ बनता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों पे लगाते हैं ताल्लुक़ बनता है। तो जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह से ताल्लुक़ बनेगा। और फिर एक और खूबसूरत जुमला, क्या इसके सिवा कोई इलाह है जो परेशान हाल की दुआ सुनता है। अम्मै युजीबुल मुस्तर इज़ा दुआहु व यक्शिफस्सू। सूरत नमल 20वें पारे की शुरू की आयतें ले लीजिए। वही मुस्तर की तकलीफ़ और अजियत दूर करता है, इसकी तमन्ना पूरी करता है, इसकी मुराद भर लाता है। अपने ऊपर लीजिए, कल रात कितने कर्प में गुजरी होगी, जिस्म चूर चूर था, बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा था, दौड़ डिसप्लिन खा ली, कोई पैरास्टामोल खा ली, टांगों को बांधा, कुछ ना कुछ आपने टोने टोटके किए ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। किसने दूर की आपकी तकलीफ़? अब आपके गोली ने, डॉक्टर ने, नहीं, ये सब बाद की बातें हैं। कहिए अम्मा युजीबुल मुस्तर, ज़रा सी जब सेहत बने ना और आगे अल्लाह के झुके। अल्लाह जी मैं कल बीमार थी ना, आपने मुझे ठीक कर दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो इतने लंबे बिल और उसके बाद और भी परेशानियाँ। अल्लाह ताला की तरफ से बिल कभी नहीं आता। फिर एक और जुमला लीजिए, जो अख्लाक के लिहाज से मुफलिस हैं इनको सामान सदके में से दो। अगर वो तुम्हें गालम गलोच करें यानी बुरा भला के सबो शितम करें या अजियत दें तो इसका इवज़ अल्लाह के यहाँ मिलेगा। ये अख्लाक के मुफलिस कौन होते हैं जी? माल का मुफलिस कौन है जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है? अख्लाक का मुफलिस वो है जिसके पास अच्छा अख्लाक नहीं है, बद अख्लाक है, बुरी ज़ुबान, अलग गिबतें, ताने, इल्ज़ाम, और ऐसा बंदा एक आँख नहीं भाता। आप दीजिए उसको सदका, अपने उस रिश्तेदार को कुछ दे दें जो आपको एक आँख नहीं अच्छा लगता। वो गालियाँ दें, आप दुआएं दीजिए और आप देखेंगे फिर वमा सब्रु का इल्ला बिल्ला। फिर आपको याद समझ आएगी कि मेरा सब्र तो बस अल्लाह ही के नाम पे है। तो किसी एक के साथ अच्छा एहसान करके देखिए, इससे भी गम दूर होंगे। अपने रिश्तेदारों को सोचिए। बात कहते हैं मेरी सास मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपनी सास को अच्छी नहीं लगती, मेरी फलां बहू मुझसे खिंचती है, फलां भाई बहुत कंजूस है, फलां बहन है बहन लेकिन खून सफ़ेद है। सदका कीजिए उनको, देखिएगा आपका दिल कितना ठंडा रहेगा। चलिए एक और लीजिए, जब कश्ती का खोया डरता है तो या अल्लाह पुकारता है, मुसाफिर भटक जाता है तो अल्लाह को पुकारता है, कैदी अपने गम में अल्लाह को याद करता है, मरीज़ दिल तंग होता है तो इसकी ज़ुबान से या अल्लाह की फरियाद निकलती है। आपके मुँह से क्या निकलता है? किसी बुज़ुर्ग का नाम तो नहीं निकलता गलती से? किसी इंसानी सहारे के साथ रूहानी सिलसिले तो नहीं बने हुए? नहीं, एक ही राज है, सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ज़िंदगी की कश्ती भंवर में फंसे या हकीकी कश्ती भंवर में फंसे या गाड़ी ना चले या घर की अंदर कोई खराबी आ गई, या अल्लाह पुकारिए, देखिएगा वो आपके लिए रास्ते बना देगा खैर के। फिर एक और, अल्लाह अहद और अस्समद है, कायनात इसकी तरफ मुतवज्जे है, मखलूकात इसे चाहती हैं, सारी इंसानियत मुख्तलिफ ज़ुबानों लहजों में और सारी ज़रूरतों में इसे पुकारती हैं। इतनी बड़ी हस्ती को आप पुकारने लगे हैं। और मज़े की बात है कि हर एक को लगता है कि अल्लाह मेरा, बल्कि कभी कभी तो इंसान इतना बखील होता है वो कहता है सिर्फ मेरा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस ये अल्लाह तो है ही मेरा। चलिए ये अपनाइयत है, आप भी यही सोचें मैं भी यही सोचूं, लेकिन सब उसी से मांगते हैं, और ये इसलिए कि अल्लाह अहले ईमान का आका व मौला है, इनका रास्ता रोशन करता है, दलील बयान करता है, हिदायत देता, दलालत और जहालत से इनकी हिफाजत करता है। तो अल्लाह को अपना मौला बना लीजिए, फने मल मौला। अहले ईमान का बस एक ही आका है और एक ही मौला है। हम कहते हैं ना कि सबके और बड़े होंगे, दूसरों के और होंगे, अल्लाह मेरा बस तू ही है, बस ये कहना ही आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि एक ही अच्छा है भाई, अच्छा मालिक एक ही बहुत है, और कज खुल्क और बुरे बहुत सारे भी बुरे हैं। फिर एक और आस लीजिए, औरतों के साथ नरमी बरतो, दिल शिकनी से बचो और लुत्फ से पेश आओ, लोगों पर रहम करो, जज्बात का ख्याल करो, गैर पर एहसान करो और दुनिया वालों से हुस्ने सलूक इख्तियार करो। क्यों? इसलिए कि औरतें अमूमन तभी होती हैं, मर्द के इख्तियार में है, चाहे पाँव की जूती बना ले या फिर उसको इज्जत बनाकर अपने सर पे डाल दे, जो भी करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। तो अपनी औरतों को बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, माँ होने के नाते और फिर बीवी होने के नाते इज्जत दीजिए। अल्लाह के नबी ने औरतों को बड़ी इज्जत दी, आपके अज़वाज मुतहरात आपके दिल की रानियाँ थीं, आपकी बेटियाँ कैसे आपकी आंखों की ठंडक थीं, बेशक इसके कि आपने कहा कि मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आने पे कैसे अल्लाह के नबी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। तो औरत को इज्जत देने वाले इस बात की गवाही देते हैं कि एक औरत के वजूद से तो अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा, तो मैं औरत को फिर कैसे कमज़ोर समझूं, मैं उस माँ को कैसे छोटा समझूं कि जो मेरे इस दुनिया में आने का ज़रिया बनी। फिर एक और आज लीजिए, गैज़ो गज़ब को छुपाओ, लोगों की लग्जिश से गफलत बरतो, बुराई से सरफे नज़र करो, गलती को माफ़ करो, माइब दफन कर दो, यानी जो भी ऐप दिखते हैं ना लोगों में, माइब ऐप से लोगों के महबूब बन जाओगे। चलिए उंगली पे गिनिए, जब गैज़ और गज़ब आ जाए छुपा लें, यानी गुस्से को छुपा लें, पी जाएं। लोगों की लग्जिशों से गफलत बरती है, लोग कोई कमी बेशी इधर उधर करते हैं ना, तो आप ओवरलुक कीजिए, कोई बुराई देख ली सरफे नज़र कीजिए जैसे कोई कुछ देखा ही नहीं, किसी से कोई गलती होगी उसको माफ़ कर दें, किसी का ऐप खुल गया तो उसको पीछे कर दें। देखिएगा इन बातों से आप लोगों के बिलवड बन जाएंगे, हर दिल अजीज़ बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाद में तो फिर इसमें मज़ा आने लगता है। चलिए एक और बड़ा ही खूबसूरत राज है, दरवाज़ा हो, कुंजी हो, कमरा हो, जिससे हवा दाखिल हो, और तकवा और इस्लाह वाला मुतमाइन दिल, बस समझो कि कामयाबी मिल गई है। हम कहाँ इतनी सी छोटी सी चीज़ों पे कामयाब कहते हैं खुद को। आप देखिए ना कि दरवाज़ा है, खोला, चाबी लगाई, दरवाज़ा खोल कर अंदर गए, एक आपका साफ़ सुथरा कमरा है, हवा आ रही है, मतलब ये कि एक अच्छा हाइजीनिक रूम है, बस ज़िंदगी की ज़रूरत यही है ना, सर छुपाने के लिए। और आपके अंदर दिल में तकवा और इस्लाह है, यानी आप कॉन्टेंट हैं, मुतमईन हैं, दिल में बहुत ही सुकून है। देखिए आप अपने हाथ में चंद नोट पकड़िए, किसी वक्त भी ये तजुर्बा कीजिए, दुनिया के जिस मुल्क से भी आप इस वक्त सुन रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी नोटों की सूरत में हाथ में लीजिए, नए नोट हैं तो और भी ज़रा अच्छा लगेगा आपको, कड़ कड़ करते हुए नोट। बाहर के मुल्कों में तो नोट शायद लोग देखते ही नहीं, बैंकों से इधर से उधर बस फिगर्स देख के खुश होते हैं, 1, 2, 3, 6 डिजिट और 5 डिजिट, इसलिए इन मुल्कों में कैश नायाब है। फिर भी कुछ भी देखे अपना कार्ड पकड़ कर बैठ जाइए, बैंक कार्ड ले लीजिए जो जिससे आप पैसे खर्च करते हैं, आप उसे एक कागज़ के टुकड़े या कुछ चंद नोटों को देख कर पूछिए, क्या मैं अपने घर के सारे अफराद की जगह नोट लेना पसंद करूंगी, यानी सब घर वाले ख़त्म हो जाएं और उनकी जगह मुझे इतने इतने नोट मिलते जाएं, कभी भी नहीं मानेंगे आप। अपने घर को देखिए, मेरा घर कोई ले ले, मैं सड़क पे आ जाऊं लेकिन मेरी जेब नोटों से भर जाए, बस समझ गए आगे भी आप। जब नोट सर में दर्द हो तो दवा नहीं बन सकते, जब तक कि आप जाके डॉक्टर से दवा ले ना लें, टूल तो है लेकिन खुशी नहीं है। तो फिर याद रखिए, ये वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप अपने आप को बेसुकून करें, फजूल की ज़िंदगी बेकारी है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ बोझ है, कदरे किफाफ में गुजारा कर लेना इसराफ और तबजीर से बेहतर है। सच बात है ये। अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को ज़रा सजा कर सॉर्ट आउट तो कीजिए। मसलन गर्मियों के दिन हैं, 4 से 5 पतले जोड़े, एक धो लिया, एक मशीन में है, एक इस्त्री कर रहे हैं, एक आपने पहना हुआ, काफ़ी होंगे, गुजारा हो जाता है। एक जूता कॉमन वेयर और एक थोड़ा सा कैजुअल काफ़ी है। घर में खाना इतना है कि आप 2-3 दिन आसूदगी के साथ फ्रिज से निकालें और पका लें। इसके बाद की चीज़ें एक्स्ट्राज हैं, फिर ज़ाया होती है, फिर फेंकती है। जितने कपड़े ख़रीदेंगे उतने फेंकेंगे, उसको दे दो उसको दे दो, क्योंकि एक तो और नए नज़र आ रहे हैं लेने वाले, और दूसरी ये बात है कि अलमारियों में जगह ही नहीं है। तो ज़िंदगी को हल्का कीजिए, किचन आपका ऐसा हो कि बस अलमारी खोली, ठक ठक ठक, ये इस डब्बे पे ये लिखा है, ये लिखा है। किसके पास इतना टाइम है कि 15 मसालों में से जाके 4 ढूंढ के निकाले, छोड़ो मैं नहीं डालती। ये पहनने पकड़े कपड़े पहन लिए, इतने जूतों में कौन ढूंढे कि आज क्या पहनना है। हम तो गुलाम हो गए इन चीज़ों के। ज़रा से अपने घर को सॉर्ट आउट कीजिए, इधर इंसानों की जगह बनाइए। इंसान चीज़ों से ज़्यादा कीमती होते हैं, बाकी तो सिर्फ आप खादिम हैं। अपने लिए एक सवाल लिखिए, क्या मैं खिदमत कर रही हूँ या करवा रही हूँ? ये बेजान चीज़ों की खिदमत करते करते जब दुनिया से जाएंगे ना, तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि हमने अपना कितना नुकसान किया। फिर एक और लीजिए कि साजिश के चक्कर में ना पड़ो, दूसरों के पीछे ना पड़ो, ये ना समझो कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सब अपने मसाइल में गिरफ्तार हैं। ये भी एक बड़ी खुशफहमी होती है, लोग मेरी बातें करते हैं। हमारे साथ एक बच्चा गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, तो उसको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, उर्दू नहीं आती। तो आज कोई बात करते करते उससे मिलते जुलते नाम की कोई बात किसी ने की, तो वो फ़ौरन कहेगा, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? तो जो बात करी थी वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो मैंने उससे कहा कि व्हाट डू यू थिंक, यू आर सो स्पेशल? उसको बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज़रा सी कोई बात कर रहा हो ना, क्योंकि उसको उर्दू नहीं आती। कान लगा के कहता है, आंटी यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग दिस दिस। तो मैंने उसको कहा कि वाई यू फील यू आर सो स्पेशल? बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को ये हवा होता है, वो मेरी बात हो रही है, मियाँ गए हैं ना सास के घर, मेरी बातें की होंगी, ये आज मूड ख़राब है ना, ये आज कोई बात हो, ये बहन को मिला है, ये भाई ने कान भर दी है, ये फलां दोस्त के पास जाते हैं ना तो ये ऐसे ही हो जाते हैं। भैया आपने अपने दिमाग पे इतने बोझ क्यों रखे हुए? रिलैक्स्ड आप जो हैं ना वो वही हैं, कोई ऊपर आपके धूल डाल भी देगा ना अपनी ख्वाहिशात और अपने इरादों की, तो वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। सच नहीं छुपता, ये नोट कर ले। दुश्मनों के मसले में तो अल्लाह खुद काफ़ी है, वो इनसे निमट लेगा, इनकी चाल इकारत कर देगा, इनकी फौज को पसपा कर देगा यानी नाकाम कर देगा, इनकी धार कुंद कर देगा यानी इनके वेपन्स नहीं चलेंगे तुम्हारे मुकाबले में, इनकी कुव्वत मिटा देगा, इनकी जमीयत मुंतशिर कर देगा। कह के तो देखिए कि अल्लाह काफ़ी है मुझको। बस अल्लाह ने इनके ऊपर सकीनत नाजिल की, इनकी प्यास बुझा दी, इनके सीनों की आग ठंडी कर दी, इनके ज़मीर और रूह को पाक कर दिया और आराम पहुंचाया। किन के? जो नबी की जान लेने के दर पे थे, और अल्लाह के नबी के वो प्यारे असहाब जो हालात की गर्मी सर्दी में नबी के साथ थे, जंगों में गए हुओं की बात है। ऐसी भगदड़ मची, दुश्मन भाग गए, बारिश हुई, सहाबा के सीनों पे सकीनत है, लोग प्यासे थे, इन्होंने बारिश का पानी पी लिया, और जो दुश्मनों में से कुछ को अल्लाह ने ईमान दिया तो इससे सहाबा के सीने ठंडे हो गए। अल्लाह पे नजरें लगाइए, आपका सारा जिस्म चूर चूर भी होगा ना, लेकिन आपका दिल बड़ा खुश होगा। वो नींद बड़ी प्यारी है जो अल्लाह वाला बनकर आती है, इसके बरक्स दूसरी तरफ निरी बेजारकियाँ हैं। कलमे तैयबा सच्चाई है, लिखिए हम क्या कहते हैं उर्दू में, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना, इसको कलमे तैयबा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे नफ्स फतह होते, दिल शाद काम होते, जख्म मुंदमिल होते, गुस्सा चला जाता और अमन और सलामती फैलती है जी। यानी जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आ गया, फिर उसका नफ्स खुदा बन के नहीं खड़ा होता हर बात पे, पहले मुझसे पूछो, मेरे से NOC लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर ये काम करना, नहीं। जब ये सच्चाई समझ आ गई कि वो अल हक है और दुनिया उसी की है और मुझे भी उसी का बनना है, इसी के साथ दिल खुश हो जाता है। फिर ज़ख्मों पे एक खरीड आने लगते हैं, जो बड़े से बड़ा गुस्सा भी होता है ना किसी पे, वो चला जाता है। और यही कलमा है जो दुनिया को अमन और अमान देगा, वर्ल्ड पीस ऑर्डर। ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर एक हदीस है कि अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना भी सदका है। कैसे? किसी से आप स्माइली फेस के साथ मिलें तो ये सदका कैसे है? क्योंकि चेहरा किताब का उनवान है, दिल का आईना है, ज़मीर का रहनुमा है और हमारी पहली पहचान है। बात सच है, लोगों को स्माइली फेस से मिला करें। आज सुबह से आपने स्माइल किया? नहीं किया तो इसके बाद कीजिए। अभी भी कोई पास बैठा है तो उसको देखकर स्माइल कीजिए, एक दूसरे को देखकर स्माइल करें। आपका क्या बिगड़ा? हाँ, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होगी। आप खैर के साथ बेहतरीन तरीके से दूसरों के दिलों में रहेंगे। स्माइली फेसेस को सब पसंद करते हैं, बच्चा भी बड़ा भी। बच्चे को आप घूरें रो पड़ेगा, बड़े के साथ भी यही मामला है। चेहरा जो है ना, ये टॉपिक है। आप एक बंद किताब है और आपकी इस किताब को खोलने वाली चीज़ आपका चेहरा है। किसी के लिए दिल में बुग़ज़ है कि प्यार है, चेहरे से पता चलता है। तो ये दिल का आईना है और ज़मीर का रहनुमा है। ज़मीर पे जब बोझ होते हैं ना, तो चेहरे पे स्माइल नहीं रहती, और हमारी पहली पहचान भी है। अच्छे अंदाज में जवाब दो, इस तौर पर कि इंतकाम तरक कर दो, नरम बोलो, तआमुल में नरमी बरतो और बुराई को भूल जाओ। जी, दुश्मनों को दोस्त बनाने का ये नुस्खा है, क्योंकि हमारी अक्सर तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूसरों को दुश्मन बनाने की है। छोड़िए, इंतकाम की आग में जलने से क्या मिलेगा? सख्त बातें क्यों करते हैं, नरम बात कीजिए। वो कहते हैं ना, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात तो करे, रिएक्शनरी ना हो। और अगर आपके साथ किसी ने भी बुराई की, सब भूल जाइए, इग्नोर ग्रेसफुली। और सूरह तौहा की वो आयत जो अल्लाह अपने नबी को कहते हैं, मानजलना हाजल कुराना, हमने ये कुरान नाजिल नहीं किया, किस लिए? ली तश्का, क्या आप तंगी में पड़ो? यानी हमने आप पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम तंगी में पड़ जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम खुश रहो, रूह मुतमईन हो, नफ्स को सुकून मिले और फलाह की जन्नत और सआदत की फिरदौस में तुम्हारा दाखला हो। तो इस कुरान को अपनी तकलीफ़ों या गमों की वजह नहीं बनाना, ये कुरान आपको खुश रहना सिखाता है। आपकी रूह का असल इत्मीनान इसी में है, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नल कुलूब, इसी से नफ्स को सुकून मिलता है। आप कितने भी दुखी हो, अगर आपने आराम से बैठकर ये सेशन लिया है ना, बीबी, सारे दिन की आप लगी थी, खप रहे हैं, इधर हैं, वो हैं, या कोई किसी माश में गया, कुछ भी हुआ, अगर आपने मिनट जो अभी तक हुए हैं इसको आपने अपना समझ कर बैठ कर लिया ना, तो मेरा गुमान है कि आपकी सारे दिन की थकन दूर हो चुकी होगी। ये रेमेडी है, ये है ट्रैंक्विलाइजर। हम तो ट्रैंक्विलाइजर खा के सो जाए ना, हालांकि ये इतना सुकून देता है कि इसके बाद और काम करने की एनर्जी आ जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी। सूरत हज की बिल्कुल आखिरी आयतें, मा जाल मिन हरजिन के लफ्ज़ है, बल्कि यसर और सहूलत है, मुशक्क़त की रियायत है, तकल्लुफ तंगी और सख्ती से बचाया गया। यानी ये दीन आसानियों वाला है। आप देखिए कि हर जगह ही तो सहूलतें, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, सफ़र में हो तो नमाज जमा कर लो, वजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो, इससे भी कोई सहूलतों वाला दीन होगा। और वो नबी इनसे दबाव और इन पर पड़े बोझ हटा देता है। सूरत अलाराफ की आयतों में खसाइस नबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लम की वो खूबियां जो पिछली किताबों में मज़कूर थी, उनमें क्या था? वयदान हमिसरहुम वल अगलाल लतिकानत अलैहिम, के यसर और अगलाल इस नबी ने दूर किए, यानी रस्म व रिवाज के जो बुत थे वो तोड़े। तो इन्हें शिकावत के बाद सआदत, तकलीफ़ के बाद राहत, खौफ के बाद अमन और हुज़न के बाद मुसर्रत नसीब होती है। जी, हमने अपनी ज़िंदगी को बेजा रस्म व रिवाज से बोझल किया हुआ है। मुझे तो ऐसी समझ आता है कि जीना ही नहीं समझ आया और जाने का वक्त आ गया। जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। बी पॉजिटिव, खुशियाँ बांटेंगे ना तो खुशियाँ मिलेंगी, पलट कर आपके पास आएंगी। और उन्होंने क्या कहा? रब इशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी, उन्होंने कहा है रब मेरा सीना खोल दे, मेरा मामला आसान फरमा, कि अपने सामने नूर दिखाई दे, दिल में हिदायत का रास्ता बैठे, अपने हाथ में तेरी रस्सी पकड़ लूं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी पा जाऊं। अल्लाह हमारा भी सीना खोल दे। हम तुम्हारे लिए सीधे रास्ते पर जाना आसान कर देंगे, फसन यस्सिरुहुल युसरा, तुम रब ताला की इबादत और इताअत और मुजाहदा सिदके दिली और मोहब्बत से करोगे तो तुम्हें इस राह की तलखी भी मीठी और नीम भी शहद लगेगा। आप जानते हैं कि नीम कड़वा होता है। अल्लाह किसी को भी इसकी वुस्सत से ज्यादा तकलीफ में नहीं डालता, ताकत से ज्यादा का कोई मुकल्लफ नहीं, सलाहियत और जिद्दोजहद और कुव्वत के मुताबिक ही तकलीफ दी जाती है। तो फिर जब भी कोई मुश्किल आए तो कहा करें, अल्लाह को मेरा स्टेमिना पता है। और बात तो यह कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब अगर हम भूल जाएं तो हमारा मुआख़्ज़ा ना करना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वहम होता है, कभी गफलत तारी हो जाती, कभी थकन और मुशक्क़त और भूल, तो बस ऐ रब दरगुजर फरमाना। ये तो आखिरी राज आज की इस नशिस्त का। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें खुश रहना सिखा दे, ज़िंदगी का रुख बदलिए। अल्लाह ने आपको मुझे मौका दिया, घरों में बैठकर टाइम बहुत है, इधर उधर चिट चैट करने से भी गुजर जाएगा, ख़बरें सुनने से भी वक्त गुजर जाएगा। नमाज रोज़ा करते हैं लेकिन उसकी रूह को नहीं समझते, वो इबादत जो दिन में 5 बार करते हैं लेकिन उसकी कैफियत और उसके खूबसूरत पहलू से आगाह नहीं है। तो ये छोटे छोटे सेशन इसीलिए दिए जाते हैं कि घर बैठे हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहद अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।